एक तबीयत है इंसान की, खुद को एक मतलब मुझे को बुरा ना समझे, एक इंसान की एक मिजाज में यह आता है। हर अगर जो शायद हो सकता है इससे कोई मुबर्रा भी हो, मुझे को बुरा ना समझे। अगर कभी कोई हमें किसी बात पर इसलाह करता है, नजर के हवाले से, खामोशी के हवाले से, खाने के हवाले से, लेने या देने या चलने या जाने या आने के हवाले से, हम उससे बातों का इस तरह का जवाब देने की कोशिश करते हैं पापा कि अगले पर यह जाहिर हो जाए कि मैं गलत नहीं हूं, मैं बुरा नहीं हूं, मैं नेक हूं, आई एम अ पाइस पर्सन। तो ये एक इंसान के अंदर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा वस्फ है या क्या इसकी ऐसी तबीयत है कि मैं अगले पर अपनी किसी न किसी नेकी का कोई सिक्का या पारसा का कोई सिक्का बिठा दूंगा, अगला मुझे ये समझ नहीं, मेरी गलत फहमी थी, अगला सही था मैं गलत था, अगला नेक था मैं ही इसको नेक नहीं समझ रहा था। अब ये तबीयत जब होती है तो अगला सामने वजाहत करता है कि नहीं नहीं मैं यूं नहीं यूं कर रहा था। अब ये तबीयत क्या सही है गलत है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए?
इसमें बहुत सारी बातें हैं सब, जैसे कि अब किसी को बोलना कि ये तो आपका तबर्रुक इसलिए खा रहा हूं, एक उसकी ये तो उसमें तारीफ की इसने, जिसको ये कहा यार वो तो फूलेगा ना कि मेरी ये शान है कि जिस चीज पर मेरा हाथ लग जाए वो तबर्रुक बन जाए।
अच्छा
तबर्रुक माने बाबा रखत,
जी
आम आदमी को ऐसा जुमला नहीं कहा जाता। दूसरा इसमें ये अंदेशा है कि जो भी सुन रहा है वो समझे कि भाई ये इन साहब का बड़ा मोतकिद है, बड़ा
जी
अकीदतमंद है, बड़ा दीवाना है भाई। तो इसमें मजीद रियाकारी की गुंजाइशें निकलती हैं। तो बस वही है ना कि एक चुप सो सुख, ये अगर बंदा बोलता है ना, अगर उसकी बात का ऑपरेशन हो ना तो फिर उसके अंदाज का भी ऑपरेशन हुआ, किस अंदाज से उसने बोला, किस किस के सामने बोला, बोलने का वो मौका था नहीं था, तो बहुत सारी, अगर उसका हम लेबोरेटरी टेस्ट करें ना किसी के एक जुमले का या अपने एक जुमले पर हम यानी कि फिक्रे मदीना करें, उस पर गौर करें, तो कई इसकी यानी सूरतें निकलनी शुरू हो जाती हैं और कई रास्ते इसके जो रूट होते हैं ना वो जहन्नम की तरफ गाइड कर रहे होते हैं, इंडिकेट कर रहे होते हैं कि इस तरफ है, हाँ हाँ ये जहन्नम इस तरफ है, तो सही रूट पे जा रहा, शैतान बोलता है कि यूं ही बोल दू। तो ये ऐसी ऐसी मतलब ने के उसमें बारीकियां होती हैं कि बस शैतान से बचना बड़ा दुश्वार है। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, अल्लाह हमें सीरियस बनाए। तो सर सीरियस नहीं है, मैं कह बिल्कुल कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, कोई गौर करने के लिए तैयार नहीं है, किसी को सही बात है कि जैसे कि वो खाने के ताल्लुक से जो मसाइल चल रहे हैं अब भी, मतलब ने कि कल भी मना किया था, जैसे फिर भी रोटियां हाथों में थी, सही भाइयों के टुकड़े, और अलग मना किया गया भाई ये नहीं लेनी है, इसके पैसों का मसला दूसरा है। और मतलब क्या मैं इस पर तबसरे करूं यार, ये मेरा रोजमर्रा का मामूल, मुबालगा करूं तो है कि होता ही रहता है ऐसा, चंदे की रोटियां, चंदे का खाना, वो जिसमें मखसूस तबके के लिए खाना होता है भाई, ये तलबा का है, तलबा के नाम पर मिला हुआ चंदा आप मत खाना, मगर जिसको मौका मिलता है वो छोड़ता नहीं है ऐसा लगता है, या कुछ ना कुछ रोटी उठा लेगा, कुछ कर लेगा। अरे भाई किसी का घर है, मेजबान से इजाजत नहीं है, बाहर आ बोलता मेरी नहीं है जाती ये रोटी खाना, मुझे पता नहीं भाई सिर्फ, तो क्योंकि वो जो बच गया मेजबान का होता है, जो खाने के लिए दिया गया तो उसको ले जाने की इजाजत नहीं होती। करते हैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह के तकवे पर कुर्बान जाऊं मैं, के एक बार कहीं मदऊ थे तो इनके खलीफा सैयदना बुरहान मिल्लत मौलाना बुरहानुद्दीन जबलपुरी अलैह रहमतुल्लाह अल कवी ने इकरा में इमाम अहमद रजा में ये किस्सा नकल किया है। उस वक्त इनके वालिद गिरामी ईद उल इस्लाम हजरत मौलाना अब्दुलसलाम जबलपुरी अलैह रहमतुल्लाह अल कवी भी हयात थे, ये दोनों बाप बेटे आला हजरत के मुरीद थे और खलीफा भी थे और दोनों जय्यद उलमा थे। तो आला हजरत कहीं मदऊ थे ये लिखते हैं, तो आला हजरत को वो शोरबा पसंद आया खाने का, तो आपने मेजबान से फरमाया कि یہ شوربہ اجازت دو تو میں پی لوں. اس نے کہا پی لیجئے. پھر اعلی حضرت نے مسئلہ بیان فرمایا غالباً پینے کے بعد کہ جب کہیں کھانے کے لیے جائے تو عرف و عادت کے مطابق کھائے, عرف سے ہٹ کر نہ کھائے. چونکہ شوربہ جو ہے یہ پینے کا عرف یعنی رواج نہیں ہے, ٹرینڈ نہیں ہے شوربہ پینا. تو اگر میں شوربہ پیتا تو وہ ٹرینڈ یعنی رواج کے عرف کے خلاف ہو جاتا, جو کہ ایک جرم ہوتا, غلط کام ہوتا. اس لیے میں نے اجازت لے لی. اچھا, یہاں میں مزید عرض کروں گا, یہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا اپنا ایک وزن تھا, قد تھا, اور یہ آپ کے عقیدت مندوں کا گھر تھا, بلکہ ہو سکتا مریدین کا گھر ہو. وہ اعلی حضرت نے اپنے قد اور اپنے وزن کے مطابق اجازت مانگنا, خیر بہت بڑی عاجزی ہے, لیکن یہ کہ سکھانا مقصود بھی تو ہوتا ہے نا, ورنہ یہ کہ ہم کہیں جائیں تو اس طرح کے شوربے پینے وغیرہ کی اجازت سے بھی ہمیں بچنا ہوگا. اعلی حضرت کی سنت کہہ کر آپ بولو کہ میں آج روٹیوں کے بدلے خالی بوٹیاں کھا سکتا ہوں, یا آپ کے پتیلے میں نلیاں چھانٹ سکتا ہوں, یا آپ کی بریانی جو ہے اوپر کے کورے کورے چاول مجھے اچھے نہیں لگتے, اگر اجازت ہو تو ہم یہ چار استائیں بھائی جو آئے ہوئے ہیں وہ نیچے جتنا بھی مسالہ ہے وہ سب کھا لیں, وہاں پورے اجازت. تو یہ امپریشن خراب کرنے والی بات ہے, بلکہ وہ تکلیف دہ ہے میزبان کے لیے, کہ میزبان پسند نہیں کرے گا نا کہ آپ مسالہ کھا جاؤ باقیوں کو خالی ابلے ہوئے چاول کھلا دو. تو وہ شوربہ چونکہ اعلی حضرت نے وہ اجازت کی ترکیب فرمائی, وہ اس لیے تھا کہ شوربہ اور روٹی ملا کے کھانے کا عرف ہے, شوربہ پینے کا عرف نہیں ہے. وہ پینے کی پھر یخنی الگ چیز ہوتی ہے, یخنی کسی نے رکھی تو اب اجازت کی ضرورت نہیں ہوتا ہی پینے کی. تو شوربہ بہرحال روٹی کے ساتھ بھگو کر کھانا ہوتا ہے, تو اس لیے آپ نے اجازت طلب فرمائی کہ میں پیوں اس کو. اب ہم اجازت لینے کا تو تصور ہی نہیں, شرماتے ہم لوگ, تو ہم کیا کرتے بتائیں, قورمہ روٹی بھی رکھی ہے, بریانی بھی رکھی ہے. تو وہ قورمہ روٹی کے ساتھ کھانے کا عرف ہے, لیکن اچھے اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بریانی کے لیے وہ قورمہ بھرا چمچ ڈالا, اس میں مسالہ ڈالا, اس کی بوٹی وہ ملا کے کھا رہے, سوچتے ہی نہیں. یہ روٹیاں کے لیے رکھی ہے, روٹی اور قورمہ کھایا جاتا ہے, بریانی میں اگر ڈالنا ہے تو شوربہ نہیں, رائتا ڈال سکتے ہیں, رائتا اگر رکھا ہوا ہے تو, دہی رکھی ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں, اس کا عرف ہے, شوربے کا عرف نہیں ہے. اپنے گھر میں بھی کوئی اس طرح نہیں کرتا ہوگا, لیکن والے مفت دلے بیرم, کوئی سوچتا نہیں ہے, کسی کو پوچھتا نہیں ہے, کس سے میزبان کی دل آزاری ہو رہی ہے, میزبان کے کلیجے کی آزاری ہو رہی ہے, دل کے ٹکڑے ہو رہے ہیں, کچھ کوئی پرواہ نہیں ہے. جو سمجھ میں آتا ہے کھاؤ, زردہ رکھا ہوا ہے اس میں قورمہ ڈالا, اس کو کھانا شروع کیا, لیکن زردے کے ساتھ قورمہ نہیں کھایا جاتا, اگر اچار ہے تو وہ زردے کے ساتھ شاید کھانے کی اجازت مل جائے, ویسے قورمہ نہیں, قورمے کی سمجھ نہیں آ رہی. اب اگر قورمہ ڈالنا اور آپ ہیں قداور شخصیت اور آپ کو لگتا ہے کہ اجازت مانگنے میں حرج نہیں ہے تو اجازت دے لیں, قورمہ اور زردہ کھائیں, قورمہ اور بریانی کھائیں ملا کر, آپ کی مرضی ہے, لیکن اجازت لیجئے. ہمارے یہاں اجازت کوئی نہیں لیتا, بلکہ کہاں کا حلال کہاں کا حرام جو صاحب کھیلا ہے وہ چٹ کیجئے. ہم تو تحقیق میں پڑھتے کہاں, میں نے عرض کیا اتنے مسائل بیان کرنے کے باوجود بھی وہ جو جب بھوک لگتی ہے خوشبو شروع ہوتی ہے کھانے کی, تو بندہ پہلے کھا لو بعد میں معلومات کریں گے اس کا مسئلہ کیا ہے. یہ تو تھا طلبہ کا جامعۃ المدینہ کا, تو ہم نے کھا تو لیا, ہم لوگ تو وہ تربیتی کورس کے لیے آئے ہیں, ہم کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے, پہلے کھا لیں پھر پوچھیں گے. یہ پوچھنے والا بھی لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا, باقی تو मतलब हड़प कर जाते, और ये एक बार नहीं दो बार नहीं, अगर 100 बार कहूं तो शायद मुबालगा ना हो कि मैंने देखे ये तमाशे, जहन ही नहीं है। समझाओ 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 फिर भी भूल जाते, पता नहीं भूल जाते हैं या नफ्स बुला देता है या नजरअंदाज कर देते हैं कि यार खाओ पियो जान बनाओ देखी जाइए।
बाजों का जवाज की कोई सूरत समझ में आ रही होती है, अज खुद आ रही होती है,
इसका क्या करें? मुज्तहिदीन किराम तो होते ही इसमें, वो चूंकि चुनाचे करके वो अपने दिल को मना लेते होंगे, बापा की आदत पड़ी है बोलता रहता है।
आप ना बोलो तो बनेगा क्या? अल्लाह आपको सलामत रखे,
आमीन,
और हमें समझने की तौफीक अता फरमाए,
मुझे भी सही बोलने की सआदत बख्शे। तो बारह लिए के मीठे मीठे साहब भाइयों खूब गौर क्या करो। एक और जो ईद उल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक से वाकया अर्ज करना था, तो वो भी इकराम इमाम अहमद रजा में इस तरह का वाकया है कि एक जगह मदऊ थे, वहां ईद उल इस्लाम भी मौजूद थे, आला हज़रत के खलीफा मौलाना अब्दुस्सलाम जबलपुरी अलैह रहमतुल्लाह अल कवी और बुरहान मिल्लत ने जो लिखा है वो मौजूद थे नहीं थे ये याद नहीं आ रहा, लेकिन ईद उल इस्लाम बराबर में हाजिर थे आला हज़रत के। तो वो फिरनी पेश की गई, गालिबन फिरनी थी, तो आला हज़रत को बड़ा प्याला मिला, बाकियों को नॉर्मल। ये होता है जो शख्सियत होती है तो उसको लोग वो डबल देते हैं, वो शिरनी भी बटती है जब, तो मौलाना को डबल मिलती है बाद अवकात, या पैकेट मिलता है डब्बा मिलता है, ये हमारे उर्फ है कोई हरज नहीं इसमें। तो सरकार आला हज़रत को उन्होंने बड़ा बर्तन दिया वो खाने के लिए, तो आला हज़रत इतना खाना आपको आप गवारा नहीं था, आपको नहीं चाहते थे, तो आपने कुछ खाया और मेजबान से फरमाया कि अगर आप इजाजत दें तो मैं ये बकिया जो है मेरा बचा हुआ ये ईद उल इस्लाम को दे दूं, अब्दुस्सलाम को दे दूं। इसमें भी फिर आला हज़रत ने मसला बयान फरमाया कि जब खाना पेश किया जाता है तो मेहमान उतने ही का मालिक है जितना वो खाने में कामयाब हुआ। ये मैं अपने अल्फाज में अर्ज कर रहा हूं, मेहमान उतने ही खाने का मालिक है जितना वो खाने में कामयाब हुआ, जो बच गया वो मेजबान का हक है। तो बगैर इजाजत के ना हम ले सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं, जो मखसूस कर दिया गया, तो ये मखसूस कर दिया गया ना बड़ा प्याला आला हज़रत के लिए, तो इसलिए आला हज़रत ने इजाजत तलब फरमाई। बाहर शरीयत में यहां तक लिखा हुआ कि दो दस्तरखान बिछे हुए, तो एक दस्तरखान वाले दूसरे दस्तरखान वाले को रोटी भी नहीं दे सकते उठा के, जायज नहीं है ये लिखा। हम लोग क्या क्या करते हैं, हम तो रोटी जेब में डाल लेते हैं, फिर बोलते हैं आपका हाथ लगा हुआ है, फिर मेरा हाथ लगा तो मेरे बाप की रोटी थोड़ी तुम लेके जा रहे हो यार, मेरा हाथ लगा हुआ तो क्या हुआ, तो मेरा हाथ तो माइक पर लगा हुआ, वो उठा के चलते बनो, फिर गुजरो वहां से तो वो तुमसे पहुंचेगा, समझे, जो उधर दरवाजे में खड़ा हुआ होगा, तो जो मेरा हाथ लग गया वो तुम्हारे लिए जायज हो गया, तो कोई बात थोड़ी हुई। तो इसलिए ये विचारे मसाइल पर और अहकामात पर शरीयत के गौर नहीं करते। अच्छा, अब रोटी के ज़िम्न में ये अर्ज कर लूं कि किसी के घर हम दावत पर गए हो ना, ये उस वक्त के लिए मसला, किसी के यहां दावत में हो। अब जैसे कि यहां हम फैजान मदीना में खाना खा रहे हैं, वो चंदे का खाना है, सब मिलके खा रहे हैं, तो यहां के दस्तरखान वालों ने यहां रोटी उठाकर दे दी, उसको ये मसला लागू नहीं पड़ेगा, इसको दे सकता है, इधर का कोरमा इधर आ गया उधर का, तो ये सब एक किस्म का खाना सब मिलके खा रहे हैं, किसी की जाति यानी कि मेजबान या नहीं है। जो कब जब अपने कहीं मेहमान हो ना, ये ऐसी जगहों के लिए मसाइल है, क्योंकि अब मेहमान मेजबान है वो चाहता है कि भाई इनको कोरमा खिलाए और ताफ्तान दे, और अब हम जैसे जो आम आदमी है इस सब में बैठे में इन मेहमानों को ये हो सकता है कि वो सादा सी तंदूरी रोटी और शोरबे वाला सालन खिलाए, तब इधर से आप वो कढ़ाई और फ्राई गोश्त और ये के ताफ्तान और ये माल माल उठाकर इधर दे दो, तो ये मेजबान को पसंद नहीं आएगा, मेजबान का दिल दुखेगा इससे। भले बोलेगा भी नहीं, मुस्कुराता रहेगा, लेकिन उसको मजा नहीं आएगा कि भाई तुमको नहीं पसंद था, तुम यार हाथ रोके रखते, जो मेरे इतने सारे मौजूद मेहमान हैं उनका उठाकर तुमने इधर दे दिया। ये मैं आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, तो इसलिए वो उठाकर दे नहीं सकते। यहां तक लिखा है कि मेजबान के बच्चे को भी नहीं दे सकते, मेजबान के खादिम को भी नहीं दे सकते। बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है तो उसको भी बोटी उठाकर नहीं डाल सकते। मेहमान जिसके हम घर पे मेहमान है ना, और जितना खाना शराब होते खा लो, बाकी एक कतरा भी नहीं, बोटी का एक रेशा भी आपका नहीं है, सब मेजबान का। हाँ, जो हड्डी चूस के फेंक दी लोगों ने, वो अगर आपको ले जाना ठीक है, वो उसमें उर्फ है कि फेंक दिया जाता है, तो जो चीज फेंक दी जाती है जिस पर उर्फ है वो अलग चीज है। अगरचे हड्डियां बिकती हैं, लेकिन आमतौर पर लोग इसको जिनके यहां दावतें होती बेचना कभी सुना नहीं है। अब यहां यही एहतियात अगर करनी है तो हड्डी भी ना उठाए, खामा का कोई मसला खड़ा हो अपने लिए। मगर अभी एहतियात तो वो करे कि जो मतलब उस शरीर नाजायज और हराम होता है उससे बचे। अब यहां तो हम तो मतलब हमारी हालत ही बुरी हो गई है, कुछ समझ ही नहीं आती, कुछ कोई समझाए तो भी समझ नहीं आती। अने सितम जरीफी तो ये है ना, समझाए फिर भी समझ नहीं। जिसने 100-100 मदनी मुजाकर अटेंड कर लिए, बाद उसका भी जहन नहीं बनता, खाने पर जब वो आता है तो फिर खलास वास्ती ने चढ़ा के वो टूट पड़ता है। तहकीक उसकी यानी कि जबकि वो नहीं समझ आती उसको कि किसके लिए क्या, जैसा बेन लकवामी हो रहा था, भाई इनके लिए होगा यार, मैं पूछ तो लू यार, मैं तो बेन लकवामी बाहर मुल्क से आया नहीं हूं, ये खाना किसका है, कैसा है, क्या है, मुझे खाना चाहिए कि नहीं, वो समझ ही नहीं आती। न खिलाने वाले को इतनी अक्ल होती है कि वो कुछ समझाए या मना करे, कि वो भी बेचारा पल्ले से हो ना उसका दिल जले, या जिसको खौफे खुदा उसका दिल जले। बाकी आमतौर पर बिल्कुल यानी अंधेर नगरी चौपट राज दुनिया में इस वक्त चला हुआ है। अब जो अहले तकवा थे वो शायद मजारों में चले गए या कहीं गारों में छुपे होंगे, आम तौर पर यानी कि इसका रुझान कम है। इस तरह की मालूमात लोगों को है भी तो वो तवज्जो नहीं देते, क्या पता ये एक लुकमा हमें यार उठाकर जहन्नम में झोंक दे, क्या हम ये बिल्कुल बगैर किसी तहकीक के उखा रहे। तो ये जो मैंने मसाइल अर्ज किए सिलसिले में बाहर शरीयत से भी पढ़कर, तो ताकि मेरी कोई अगर इसमें कोई भूल चूक हो वो भी दूर हो जाए। बाहर शरीयत हिस्सा सिवुम सफा 393 मसला 5, एक दस्तरखान पर जो लोग खाना तरावुल करते हैं इनमें से एक शख्स कोई चीज उठाकर दूसरे को दे दे, ये जायज है, जबकि मालूम हो कि साहिब खाना को यह देना नागवार ना होगा, और अगर मालूम है कि इसे नागवार होगा तो देना जायज नहीं। बल्कि अगर मुश्तबा हाल हो, न शुबा हो, मालूम ना हो कि नागवार होगा या नहीं, जब भी ना दे। मसला नंबर 7, दस्तरखान पर खाना खाया जा रहा है तो एक दस्तरखान वाला दूसरे दस्तरखान वाले को कोई चीज उस पर से उठाकर ना दे, मगर जबकि यकीन हो कि साहिब खाना को ऐसा करना नागवार ना होगा। यानी अगर ये यकीन है कि साहिब खाना को जिसका घर है, जिसके घर हम गए हुए खाने के लिए, उसको बुरा नहीं लगेगा देने से, तो दे सकता है। लेकिन इतनी सोच नहीं होती है, सारे मुज्तहिद भरे होते तकरीबन, ये कोई बाशऊर आदमी गौर कर सकता है, बाकी हमें तो समझ में आता है कि बचना ही आफियत है, दिल को मना ही लेते हैं, इसको बुरा थोड़ी लगेगा, अरे अपना आदमी है यार, ये उठाया, ये खाया, ये ले गया, घर का आदमी है, घर की बात है। अच्छा, किसी का मजाक उड़ाएंगे ना, तो इसको अगर कोई समझाएगा ना कि यार नहीं नहीं हमारी चलती है, बोलते हमारी हमारी तो चलती है यार, क्या चलती है, उसका दिल का بیچارے کا کیما کیما ہو گیا, اور تمہارا کب تمہارے ساتھ مذاق کرتا ہے, نہ ہماری چلتی ہے. یہ جیب مٹانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں ہماری چلتی ہے. وہ سیم چیز ہو نا جب, تو عموماً یہ کہ برا لگتا نہیں ہے. جیسے یہاں اس دسترخوان میں روٹیاں ختم ہو گئی, اس پہ باقی ہیں, تو روٹیاں سیم ہو جبکہ ایک ہی طرح کی, تو اٹھا کر دے دے. اور اگر تافتان ہے تو نہیں ملے گی اجازت میزبان کے بغیر. اس لیے کہ یہ شخصیات ہیں, یہ عوام ہیں, یہ سسرال والے ہیں, یہ عام رشتے دار, یہ عام لوگ ہیں, فرق ہوتا ہے. اس لیے وہ ان کے لیے بعضو آئٹم میں ایسی کرنا نہیں چاہیے کہ لوگوں پر خواہ مخواہ نظریں لگتی ہیں, تنفیر کا باعث بنتا ہے, باتیں بنتی ہیں, غیبتوں کے دروازے کھلتے ہوں گے. اگر کسی نے کیا تو ہمارے لیے مسئلہ یہ کہ ہم بچیں.
بابا عموماً مسکرا کر وہ ہاں کہہ دیتا ہے, لیکن بسا اوقات یہ دعوت پھر اس کی آخری دعوت ہوتی ہے.
اب یہ کہ قرینہ اگر ہے کہ وہ مسکرا رہا ہے, اب ایک آدمی دل کیسے پڑے گا اس کا یار.
آپ نے نہیں, میں بابا عرض کر رہا ہوں, جو آپ نے جو احتیاط والے مدنی پھول دیے نا, میں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ احتیاط یہی ہے کہ اپنی جدا میں پوتے پوتے موبے میری مارو.
ہاں احتیاط کر, اب ایک تھال میں مل کر کھا رہے نا, تو چلو ایک ہی طرح کی چیز ہے, تو ایک طرح اس کو تھوڑا زیادہ کھلا دیا, خود کم کھا لیا, تو جو جتنا کھائے اس کا مالک ہے. اس پہ تو کوئی کچھ بولے گا ہی نہیں کہ تم نے کیوں زیادہ کھا لیا, اس کو کیوں کم کھلایا. اس کا چانس نہیں ہے کہ میزبان مہمان کو اس پر کچھ احتجاج کرے. اب بہت زیادہ فری ہو اور بول دے, وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. خیر, بعض لوگ ایک ہی دسترخوان پر معززین کے سامنے عمدہ کھانے چنتے ہیں. وہ میرے والی بات آ گئی, تافتان والی اور سادی روٹی والی. بعض لوگ ایک ہی دسترخوان پر معززین کے سامنے عمدہ کھانے چنتے ہیں اور غریبوں کے لیے معمولی چیز رکھ دیتے ہیں. اگرچہ ایسا نہ کرنا چاہیے کہ غریبوں کی اس میں دل شکنی ہوتی ہے, مگر اس صورت میں جس کے پاس کوئی اچھی چیز ہے اس نے ایسے کو دے دی, جس کے پاس نہیں ہے تو ظاہر یہی ہے کہ صاحب خانہ کو ناگوار ہوگا. کیونکہ اگر دینا ہوتا تو وہ خود ہی اس کے سامنے بھی یہ چیز رکھتا, یا کم از کم یہ صورت اشتباہ کی ہے, شبے کی ہے. لہذا ایسی حالت میں چیز دینا ناجائز ہے. اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہے, مثلا روٹی گوشت, اور ایک کے بعد روٹی ختم ہو گئی, دوسرے نے اپنے پاس سے اٹھا کر دے دی, تو ظاہر یہی ہے کہ صاحب خانہ کو ناگوار نہ ہوگا. کیا مسئلہ نمبر 6 بھی کام کر, دوسرے کے یہاں کھانا کھا رہا تھا, دوسرے کے یہاں کھانا کھا رہا ہے, ساحل نے مانگا اس کو, یعنی مہمان کو, یہ جائز نہیں کہ ساحل کو روٹی دے دے. مہمان یعنی اس کو یہ جائز نہیں, یعنی مہمان کو یہ جائز نہیں کہ ساحل کو روٹی کا ٹکڑا دے دے, کیونکہ اس نے اس نے یعنی میزبان نے اس کے یعنی مہمان کے کھانے کے لیے رکھا ہے. اس کو مالک نہیں کر دیا کہ جس کو چاہے دے دے. مسئلہ نمبر 8, کھاتے وقت صاحب خانہ کا بچہ آ گیا تو اس کو یا صاحب خانہ کے خادم کو اس کھانے میں سے نہیں دے سکتا. لیکن یا تو یار ایک کو دعوت ہوتی ہے, 10 جا دھمکتے, اس کا کیا؟ یہ تو بالکل عام مشاہدہ ہے کہ ایک کو دعوت دی اور 2-4 کو ساتھ لے کر پہنچ گیا. اب اس کے بارے میں حدیث شریف میں یہ ہے کہ جو بغیر دعوت کے کسی کے کھانے میں گیا وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گری کر کے نکلا, تو یہ حرام ہے اس طرح کسی کا بغیر دعوت کے کھانا کھا ڈالنا. کیونکہ یہاں عام ہے, عام مل عام ہے, اتنا عام ہے. اور شاید جتنا مجھے اس کا تجربہ ہے کتنی کسی کو نہیں ہوگا اتنا تجربہ. اب یہاں صرف یعنی یہاں کیا یار, وہ باپا کیا جا رہے نا, باپا کو دیا جاتا ہے لیا جاتا ہے کیا؟ یہ بتا, بڈھا باپ کماتا ہے جوان بیٹا کماتا ہے؟ کون کماتا ہے؟ بڈھا باپ کماتا ہے, بڈھا باپ کھلاتا ہے, جوان بیٹا खाली खा के पेट पे हाथ फिराता है, तो बापा का माल है खाओ। बोलो ना यार कुछ, बापा कमाएगा बेटा कमाएगा, तो बापा पर खाली जान कुर्बान करनी है, जेब संभाल के रखनी है। बिल्कुल पकड़ के अल्फाज कुर्बान। तो बहरहाल ये कि मैं चोट कर रहा हूं आपको कि चाहे बापा हो चाहे चाचा हो, बगैर दावत के किसी को मत ले जाया करो यार। और अब तक ले गए हो तो उससे कम से कम माफी तो मांग लो यार किसी से, किसी के पास ले गए हो तो ये तो कर लो, बल्कि पेशकश कर दो कि जितना मेरे साथ जिसको लाया था वो खा डाला है उसने, तो आप पैसे ले लो मेरे से, ऑफर तो कर दो किसी को यार। या ये कि सुन सुन सुनते जाओ, या अगर खुद कहीं बगैर दावत के घुस गए थे तो मेजबान पे के पास जाकर, या शर्म आती है तो फोन करके फिर भी शर्म आती है तो लिख कर ही उसको दे दो कि मैं खा गया था, तो आप मेरे को माफ करना, या जो खर्चा है तो वो इस नंबर पर आप मुझे फरमा दे तो मैं वो खर्चा पेश कर दूंगा आपको। कोई ना कुछ यार आगे तो बढ़ो यार, कोई यहां मुझे अपने लिए तलब नहीं है कि मैं मुझसे कोई माफी मांगे, मेरे आज तक जिसने भी हुकूक तलफ किया ना मैं उसको माफ करता हूं, ठीक है। मेरे तो एडवांस भी माफ है, मेरी तरफ से माफ है, मेरा जिसने आज तक खाया उसको माफ है, कर्जा दबाया उसको भी माफ है। लेकिन देखिए ना, जिसने गलत किया उस पर तौबा अब भी वाजिब है। शरई मसला यही है कि अगरचे मैंने माफ कर दिया, अगर आपने कभी कोई ऐसा खता किए तो जो अल्लाह का जो गुनाह हुआ वो माफ करना मेरे इख्तियार में नहीं है, तो रब से भी तौबा करनी होगी। बंदा चाहे माफ कर दे लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा लगता है कि बंदे से माफी मांग ली जाए ताकि वो और क्लियर हो जाए और अपना जो इमेज है ना उस बंदे के सामने मजीद हमारा बेहतर हो जाए। ये एक मैं आपको मशवरा देता हूं, मुझसे माफी नहीं मांगना, मेरे को जरूरत नहीं इसकी। मैं एक जनरल बात करता हूं कि ये आम है बगैर दावत के खाना घुस जाना और चीजें उठाकर बिला शरी इजाजत के इसको दे देना, उसको उठा के दे देना, बच्चे को बिठा लेना, उसके खादिम को बिठा लेना, उसको खिला देना, बिल्ली को खिला देना, कुत्ते को टुकड़ा डाल देना वगैरह वगैरह, साहिल को दे देना, किसी के घर में किसी के काम में इतना नाजायज तसरुफ हमारे यहां हो रहा है कि बस एक शोबा नहीं है ना, हजार शोबे है जिसमें खताएं खताएं खताएं। नाजरीन भी गौर करें, हाजरीन भी गौर करें, मैं भी गौर करूं, आप भी गौर करें, हम सब सोचें हम क्या कर रहे हैं, इतने गुना। कोई तो शोभा हम गुना का छोड़ें जिसमें हम गुना करने से बच जाएं, हमें मालूमात ही नहीं है, इल्म हासिल करने का जज्बा ही नहीं है, सहन ही नहीं है। तो जब भी शादी की दावत भी आए ना आपको तो उसमें लिखा होता है, एक कार्डों पे एक लिखा होता है, बास जो बहुत खास होते हैं उनको लिखा होता है विथ फैमिली लिखा ना तो फिर विथ फैमिली जा सकता है, विथ पड़ोसी नहीं जा सकता, विथ बेस्ट फ्रेंड नहीं जा सकता, खाली विथ फैमिली जाए जाना है तो कि चलो भी फैमिली का एक मेंबर कम कर दिया और एक बेस्ट फ्रेंड को डाल लिया तो इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। हो सकता है फैमिली मेंबर एक रोटी खाता हो और जिस आपको ले गया पेटू हो चार रोटियां खाता हो, ना भी खाता हो, ये चार खाता हो और वो एक खाता है तब भी नहीं ले जा सकते कि जिसको दावत मिली वो जाएगा, खुद नहीं जाना चाहता तो इसके बदले दूसरे को नहीं भेज सकता, ये भी जहन में रखिएगा। तो दूसरे का आना ये मेजबान को गवारा हो ये जरूरी नहीं है, और लोग बहुत नापसंद करते बल्कि रोकने के लिए बाजों का चौकीदार खड़ा करते, इसका तो मुझे खुद तजुर्बा हुआ है। बहुत पुरानी बात है, दावत इस्लामी के पहले की बात है, तो मैं एक जगह हाल में मैं दावत पर गया था, किसी के भाई की शादी थी तो उस पर मैं मुझे दावत दी थी उसने, मैं खाने के लिए गया था, चौकीदार ने सारे अप टू डेट, अब मैं तो जब से दाढ़ी आई थी रख ली थी, उन दिनों भी मेरी इमामत थी गालिबन, तो मैं बहरहाल वो हाल में चला गया तो जिसको उर्फ में मौलाना बोलते हैं, मैं मौलाना ही नजर आता था, सारे मुंडाना शेव्ड, अब मैं मौलाना बकौले अवाम। अब मेरे को जब देखा कि कुर्ता और ये सलवार या पाजामा और ये नंगा सर नहीं, इंग्लिश बाल नहीं, इसके दाढ़ी भी है, ये तो कोई कहाँ घुस गया, मैं यूरोप गया है, बोला ना चलो चलो। अब मेरी तो हालत खराब होगी, अब ना आगे बढ़ सकूं ना पीछे हट सकूं, काटो तो खून रही। अरे मैं तो एक ठीक है, बजायर में बिल्कुल हकीर नजर आता था और आता हूं, ये दिल तो मेरे अंदर भी है ना, इज्जत है नफ्स मेरे अंदर भी है, तो घबरा गया मैं, मेरी इज्जत पर बन गई। और मैं मेरे लिए ये क्या मतलब, मैं अपनी जात के लिए तसव्वुर तो नहीं कि मैं किसी के घर में घुस जाऊं, दावत में घुस जाऊं, कहने के सही बात है कि अगर जायज भी हो ना तो भी मेरे अंदर हौसला नहीं है इतना, वो डरपोक और शर्मीला हूं शुरू से मेरा, मतलब अजीब कैफियत है, शर्मीला बहुत हूं मैं इस तरह घुस ना सकूं। हाँ जो आम नियाज होती पता है कि सब खाते ही है, वहां दावत की आदत नहीं होती कि जहां सब खाते हैं, हाँ जहां नियाज की भी बाद लोग कार्ड तकसीम करते हैं, नियाज और दावत देते हैं, वहां नहीं जा सकते, घोसपा की नियाज हमारा हमारा हक बनता है, चल चल हक बनता है ना, तो निकाल जेब में से पैसे ले ले स्वीट बाल पर फातिया, तेरा हक बन जाएगा, तू खा इस पर। अब किसी के स्वीट बाल पर नजरें गाड़ना ये तो ठीक नहीं है ना। तो ये इस तरह मतलब मुझे रोक दिया, अब मेरी तो करूं क्या, अब मैं उसको कैसे मुतमईन करूं कि मैं दावत पर आया हूं, और मैं कौन सा भूखा मरता था, अल्लाह का फजल है कि मैं कभी भी फाके की नौबत नहीं आई कि मेरे पास खाना ही नहीं है, मैं फाका ऐसा नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं तो वो एकदम खड़ा हो गया, गड़ गया जमीन में समझो, अब क्या करूं, ये रोक दिया उसने, मैं सफाई भी क्या करूं, सफाई करूंगा तो दो बातें और सुनाएगा मेरे वो, दिखा कार्ड, अब हर जगह शादी कार्ड लेकर तो आदमी जाता नहीं है, वो हाल में तो ये आमतौर पर रवाज नहीं है, ये होटलों में रवाज होता है, मेरा कार्ड शो करना पड़ता है, तो अगर होगा तो अब होगा रवाज मुझे पता नहीं है, अब तो बरसों से गया नहीं मैं, पहले तो नहीं था ऐसा, जिस हॉल में मैं अपनी उर्बा हजियाणी हॉल और इस तरह के हॉल है ना वो ईदगाह की तरफ, वहां कोई हॉल था उसमें गया था। खुदा की शान, अल्लाह ने करम कर दिया, इज्जत बचा ली मेरी, जिसने मुझे दावत दी थी उसने देख लिया, और देख लिया लगभग क्या, फिर हाथ पकड़ा छुड़ाया उससे ले गया मेरे को, बेचारे ने मान से बिठाया, अल्लाह उसको इज्जत दे कि मेरी इज्जत बचा ली, अगर वो ना होता तो मैं चला जाता, बहुत लोग हंसते बदगुमानी करते, ये मौलवी घुसा था बगैर दावत का, इसको धक्का मार के निकाला हमारे चौकीदार ने, अल्लाह ने मेरी लाज रख ली। तो ये माहौल, ये मैं इतने पुरानी बात कर रहा हूं, कोई 35-40 साल पुरानी बात, दावत इस्लामी का तसव्वुर भी नहीं था, अब तो खुदा जाने माहौल कितना एडवांस हो गया होगा। तो यूं मैं समझाने के लिए चला था ये वाक्य सुनाने कि दावत के बगैर मेजबान भी पसंद नहीं करता कोई आके घुस जाए और खा ले, बेचारा किस किस को खिलाएगा, और उसका हक बनता है, वो रोक सकता है बगैर दावत के, लेकिन चौकीदार ने कयास से रोका था, ये चौकीदार की गलती थी, मैंने उसको माफ किया, उसको रोकना नहीं चाहिए कोई इस तरह मतलब मुनासिब चाल से चल, और वाजे करीना नहीं है उसका, जो घुसता है ना तो वो थोड़ा कांपेगा डरेगा, वो इस तरह शायद उसके कोई अल्लाह जाने बहरल, तो इसको रोकना नहीं चाहिए था। तो मेरी दिलाजारी तो जाहिर जैसी तैसी हुई, मैंने उसको माफ किया, अल्लाह उसकी बेहिसाब बख्शिश करे, उसको बेचारे को करीना नजर आ गया होगा, शुबा पड़ा होगा, हो सकता है उसको गुनाह ना हो, उसी लिए उसको रखा हो गए भाई जिस चीज पर शक पड़े तुमको रोक देना है, क्या पता। तो अब ये जिसने हुक्म दिया वो भी फिर खतरे में पड़ा, ये मुसलमान की इज्जत होती है ना, मोमिन की इज्जत होती है ना, कि मुझे रोकने का सबब मेरा इस्लामी शक्लो सूरत हुई ना, ये एक सदमे की बात ही है, कोई गैर मुस्लिम रोक देते तो आदमी बोलता है कि मुसलमान कहां घुस रहा है, मुसलमानों ने मेरे को रोका, इसलिए कि मैं मुसलमान नजर आता था और ये नहीं आते थे नजर, ये नहीं है जरा अप टू डेट, आदमी जब कहीं फॉरेन कंट्री में चला जाए गैर मुस्लिम उसको कौन बोलेगा कि मुसलमान जा रहा है, जब तक तो कोई नाम नहीं बताएगा तारुफ नहीं करवाएगा, पता ही नहीं चलेगा मेड इन जापान है, मेड इन इंग्लैंड है, मेड इन या मेड इन क्या बोलते हैं, मेड इन इस्लाम है, क्या है पता ही नहीं चलेगा, आजकल तो लिबास ऐसा ही हो गया, रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जाके थाने में, ये अकबर इलाहाबादी बहुत पुराने शायर गुजरे हैं, बड़े इस्लाही अशआर इन्होंने बास कहे हैं, तो اسی طرح میرے حصوں کے لیے شاید یہ لکھا ہے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، جیسے گئے گزرے دور میں اور عبادت گزار اس گئے گزرے دور میں اسلامی شکل و شباہت، اس گئے گزرے دور میں اسلامی تہذیب و تمدن فلاں نے اپنا لیا تو جا کر لوگوں نے رپٹ لکھوا دی ڈر گئے۔ میرے کو یہ تجربہ ہوا ہے کہ بعض اوقات میں نے کہیں ٹیلی فون کیا ہے، اور یہ باب المدینہ کے تجربے بتا رہا ہوں، میں نے کہا السلام علیکم، اگلے نے گھبرا کر فون رکھ دیا کہ یہ کون سی بولی بولتے تھے، ہیلو ہیلو بولتے ہیں فون پہ تو، اور ہیلو ہیلو کا دیا السلام علیکم کس نے کہہ دیا، اور میں نے کیا ہوتا ہے کسی اپنے سائی بھائی کو اور گھر کے کسی اور فرد نے اٹھا لیا ہوتا ہے، گھبرا کے رکھ دیتے، یہ ہوا ہے میرے ساتھ تجربہ۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا حصہ مانے میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔